अध्यात्म और कुछ नहीं, भावनाओं का खेल है। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।
कौड़ियों की मोल का शरीर।
देवियों, भाइयों,
मैं आपको प्राण और शरीर का अंतर समझाने की कोशिश करता रहता हूँ और यह बताता हूँ कि शरीर का क्या मूल्य हो सकता है और प्राणों का क्या मूल्य हो सकता है और दोनों की कीमत में कितना फर्क किया जा सकता है। हमारा शरीर काम का तो है, लेकिन अगर यह मर जाए, इसमें से प्राण निकल जाए, तब क्या कीजिएगा इस शरीर को? तब इस शरीर की कितनी कीमत उठा पाएगा? आप इस शरीर को बाजार में ले जाए और कहिए कि यह आचार्य जी का मरा हुआ शरीर बिकाऊ है, खरीद लीजिए। कोई आदमी खरीदने के लिए तैयार नहीं होगा। अगर आप इसे किसी केमिकल परीक्षण वाले के सुपुर्द कर दें तो इसमें से 3-4 रुपये कीमत ही वसूल की जा सकती है। शरीर में हड्डियां कितनी हैं? ये इतनी हैं कि इनके भस्मीभूत होने पर इससे 10 फीट चौड़ी और 7 फीट लंबी रिक्त दीवार को पोता जा सके। यह चूना कितने दाम का हो सकता है? यह 3 आने का हो सकता है। हड्डियों में लोहा कितना है? इसमें से एक बड़ी कील बनाने लायक लोहा मिल सकता है। यह कितने पैसे का हो सकता है? 10 पैसे का हो सकता है।
मात्र ढक्कन है काया।
मित्रों, मैं इस शरीर की व्याख्या कर रहा हूँ।
अच्छा साहब,
इस शरीर के अंदर और क्या क्या है? इसके अंदर चर्बी है। हमारे शरीर में चर्बी या फैट की इतनी मात्रा है कि इससे साबुन के साथ टिक्के बनाए जा सकते हैं। यह कितने पैसे का हो सकता है? 12 आने का हो सकता है। इसके अंदर 3 बाल्टी पानी है। और क्या क्या चीज इसके अंदर है? इसके अंदर और बहुत सी छोटी मोटी चीजें हैं, जैसे फॉस्फोरस।
इसमें इतना फॉस्फोरस है कि उससे 3 डिब्बी दियासलाइयां बनाई जा सकती हैं।
बस आप इसे ले जाए और नीलाम कर दीजिए।
आपको 3 रुपये मिल जाएंगे। आप हमको ले जाइए और नीलाम कर दीजिए।
10,000 रुपये महीने में कहीं भी आप हमको बेच दीजिए।
हम ऐसी चीजें लिखेंगे जिससे कि वह आदमी जो हमारे लिखे लेखों को छापेगा, वह मालामाल हो जाएगा और उसकी 7 पीढ़ियां मालदार हो जाएंगी।
यह हमारी हकीकी कीमत है। इस शरीर की क्या कीमत हो सकती है? यह तो अध्यात्म का एक हिस्सा है जिसे हम कलेवर कहते हैं। कलेवर कितनी कीमत का है? किसी कीमत का नहीं है। यह बेकार जैसा है, लिफाफा जैसा है।
अंगूठी के लिए आप सुनार के पास जाइए। वह आपको अंगूठी के साथ 1 डिब्बी देगा। साहब,
यह डिब्बी कितने पैसे की है? 10 आने की है।
अंगूठी कितने रुपये की है?
650 रुपये की है। डिब्बी को देखकर आप यह ख्याल करते हैं कि यह मखमल की बनी हुई है, चमकदार है, चमचमाती बनी हुई है, पर यह तो 10 आने की है।
कर्मकांड कलेवर मात्र। मित्रों, यह आध्यात्मिकता का वह हिस्सा है जिसको हम कर्मकांड कहते हैं।
यह 2 कौड़ी का है, 10 पैसे का है। यह केवल दिखावा है और उसके अंदर कोई ज्ञान नहीं है। ज्ञान किसके अंदर है, इसी बात को आपको समझाने की मैं कोशिश कर रहा था। आध्यात्मिकता का जो प्राण है, वह चेतना से संबंध रखता है। उसका हमारे क्रियाकलापों से कोई ताल्लुक नहीं है। हमारे क्रियाकलाप जो हाथ पांव से किए जा सकते हैं, जीभ की नोक से किए जा सकते हैं, वस्तुओं की हेरा फेरी से किए जा सकते हैं।
मित्रों,
ये सारे के सारे कलेवर हैं और ये सारे के सारे कर्मकांड उस प्राण की रक्षा के लिए हैं, जैसे कि नारियल की गिरी की रखवाली के लिए ऊपर से खोपरा बना दिया जाता है। यह कर्मकांड भी खोपरे के पैसे के बराबर का है। यह खोपरा हमारे किसी काम का नहीं है, केवल जलाने के काम आ सकता है। और गिरी
तो बेटे
12 आने की हो सकती है, 1 रुपये की हो सकती है। जायका किसमें है? गिरी में है और खोपरे में।
खोपरा चबाए और दांत तोड़िए।
खोपरे की कोई कीमत है? नहीं है।
कर्मकांड, जिसके बारे में लोगों ने यह ख्याल बनाकर रखा है कि यह कर्मकांड करने से उनको यह फायदा हो जाएगा और अमुक कर्मकांड करने से उनको यह सिद्धि मिल जाएगी।
यह कर्मकांड करने से अमुक देवी प्रसन्न हो जाएगी और यह कर्मकांड करने से अमुक देवता प्रसन्न हो जाएगा। मर्मस्थल कहीं और है?
मित्रों, यह नहीं हो सकता।
अध्यात्म के सारे लाभ अगर कहीं हैं तो उस स्थान पर हैं, उस मर्मस्थल से जुड़े हैं, जहां आदमी का प्राण, जहां आदमी की चेतना और जहां आदमी की निष्ठाएं और विश्वास काम करते हैं और जहां से आदमी का जीवन प्रभावित होता है।
वास्तव में यह जीवन को प्रभावित करने के लिए, आस्थाओं को प्रभावित करने के लिए, विचारणाओं को प्रभावित करने के लिए, क्रियाओं को प्रभावित करने के लिए अध्यात्म का प्राण विनिर्मित किया गया है, ताकि आदमी उसके प्रभाव में आकर श्रेष्ठ व्यक्ति बन सके, आदर्श व्यक्ति बन सके, महान व्यक्ति बन सके, उज्ज्वल व्यक्ति बन सके, महात्मा बन सके और परमात्मा बन सके। सारे के सारे कर्मकांड को मैं अब खेल कह सकता हूँ।
जिसे आप पूजा कहते हैं, पाठ कहते हैं, कथा कहते हैं और रामायण कहते हैं, इसको मैं खेल भी कह सकता हूँ।
यह सारे के सारे खेल इसलिए खड़े किए गए हैं ताकि आदमी का विश्वास, आदमी का चिंतन, आदमी के विचार और आस्थाएं परिष्कृत होती चली जाएं, विकसित होती चली जाएं। इनका उद्देश्य आप जानेंगे नहीं, इनके कारण को आप जानेंगे नहीं तो फिर आपको लाभ नहीं मिल सकेगा।
आपकी जितनी मर्जी हो उतने कर्मकांड करते रहिए, परंतु आपको खाली हाथ रहना पड़ेगा। सिवाय शिकायत करने के और कोई चीज हाथ लगने वाली नहीं है।
जैसे कि कलम द्वारा इम्तिहान दिया जाना। मित्रों,
हम आपको कर्मकांड इसी मायने में समझा देते हैं और कर्मकांड की व्याख्या और उसके प्राण की व्याख्या, जो सिद्धांतवादिता से संबंध रखता है, उसको इसी रूप में कर रहे थे, जैसे कलम, कागज, पेंसिल द्वारा सारे लेख लिखे जाते हैं। बी शून्य ए शून्य पास करना, एम शून्य ए शून्य पास करना, शून्य डी शून्य की थीसिस लिखना, इन दोनों में क्या संबंध है? बाहर से आप देखिए, कलम के द्वारा ही इम्तिहान दिए जाते हैं और कलम के द्वारा ही शून्य डी शून्य के सब काम किए जाते हैं। कागज के द्वारा होते हैं क्या? अगर हम आपको बेहतरीन, अच्छा वाला टीटागढ़ का कागज लाकर दे दें और पाका का पेन दे दें तथा स्वान की स्याही लाकर दे दें, तो आपका यह ख्याल है कि आप एम शून्य ए शून्य पास कर सकते हैं?
क्या आपका यह ख्याल है कि आप बीओएओ फर्स्ट डिवीजन ले आएंगे?
अगर आपका यह ख्याल है तो गलत है। अगर आप फाउंटेन पेन की महत्ता मानेंगे तो मैं कहूंगा कि आपकी बात गलत है, लेकिन जब कोई आदमी आपसे यह कहे कि फाउंटेन पेन बेकार होता है, कागज बेकार होता है, स्याही बेकार होती है, तब मैं उससे लड़ने के लिए तैयार हूँ। फिर मैं यह कहूंगा कि आपका ज्ञान कितना ही बड़ा क्यों न हो, आपका अध्ययन कितना ही बड़ा क्यों न हो, आपकी मानसिक स्थिति का विकास कितना ही बड़ा क्यों न हो, लेकिन जब आप इम्तिहान देने जाएंगे और आपके पास कागज नहीं होगा, कलम नहीं होगी, स्याही आपके पास नहीं होगी, तो आपके लिए पेपर का जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। फिर आप पास नहीं हो सकते। नहीं साहब, हमको तो जबानी याद है, हम तो मास्टर साहब को वैसे ही बता देंगे, प्रिंसिपल साहब को सब किस्सा सुना देंगे और हम तो पास हो जाएंगे। नहीं बेटे, ऐसे पास नहीं हो सकते। इसके लिए कापी की जरूरत है और कलम की भी जरूरत है।
अध्यात्म का मूल मर्म है यह। मित्रों,
कापी कागज और कलम की जितनी जरूरत है उतनी ही जरूरत कर्मकांडों की है। कर्मकांड वे जिन्हें गायत्री उपासना के माध्यम से हम आपको इस शिविर में सिखाते हैं,
मसलन जल प्रक्षालन, आचमन आदि सारे क्रियाकलाप, ये सारे के सारे क्रियाकलाप विशुद्ध कर्मकांड हैं।
इन विशुद्ध कर्मकांडों के पीछे छिपे हुए प्राण को अगर आपको हम समझाए नहीं, उसके भीतर छिपे हुए संकेतों को समझाए नहीं, उसके भीतर जो जीवन भरा हुआ पड़ा है
उसको समझाए नहीं, तो मित्रों,
हम आपके साथ विश्वासघात करने वाले हैं और अपनी आत्मा के साथ दगाबाजी करने वाले हैं।
अगर हम आपको यही समझाते रहें कि यह कर्मकांड अमुक फायदा करा देगा,
देवी का पाठ करने से यह फायदा हो सकता है, चंडी का पाठ करने से यह फायदा हो सकता है और शिवजी का पाठ करने से यह फायदा हो सकता है और 24,000 का जप करने से यह फायदा हो सकता है, अगर मैं आपको यही समझाता रहूं और आपको यही कहता रहूं कि आपको जीवन के संशोधन करने की कोई जरूरत नहीं है,
आप पापी जीवन जिएं और पाजी जीवन जिएं, आप निकृष्ट जीवन जिएं और घटिया जीवन जिएं,
देवी जी की खुशामद कर लें, संतोषी माता जी की खुशामद कर लें, गणेश जी की खुशामद कर लें, हनुमान जी की खुशामद कर लें, बस आपका काम सिद्ध हो जाएगा और आपका उल्लू सीधा हो जाएगा।
अगर मैं ऐसे विश्वास जमाने वाला हूँ तो मैं अध्यात्मवाद के साथ और जीवों की जीवात्मा के साथ और जिन्होंने यह सारा का सारा अध्यात्मवाद का कलेवर खड़ा किया है उन सबके साथ विश्वासघात करने वाला हूँ।
महत्व है प्रेरणाओं शिक्षाओं का।
मित्रों, मैं विश्वासघात करने वाला नहीं हो सकता, मैं आपको असलियत समझा करके ही रहूंगा।
आप अध्यात्म को करना चाहें तो आपकी मर्जी और न करना चाहें तब भी आपकी मर्जी। मैं कर्मकांडों का बादलों के तरीके से और हिमालय के तरीके से महात्म्य नहीं बता सकता। मैं तो आपको यह बताऊंगा कि यदि सारे के सारे महात्म्य अगर कहीं हैं तो वे उसकी उन धाराओं में, दिशाओं में हैं, प्रेरणाओं और शिक्षाओं में हैं जो इन कर्मकांडों के माध्यम से हम आपको सिखाते हैं और समझाते हैं। अगर ये माध्यम नहीं होंगे तो हम किस तरीके से आपको सिखा पाएंगे? ब्लैकबोर्ड हमारे पास नहीं होंगे, खड़िया हमारे पास नहीं होगी तो हम आपको गणित कैसे सिखा पाएंगे?
जरा आप बताइए तो सही।
नक्शा अगर हमारे पास नहीं है तो हम किस तरीके से आपको सड़क दिखा पाएंगे?
अथवा आपको टाइम टेबल कैसे बताएंगे कि कौन सी रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक जाएगी
और आपको किस गाड़ी से या बस से जाना चाहिए? मैप नक्शा हमारे पास है नहीं, टाइम टेबल है नहीं, फिर इसके बिना हम कैसे समझा पाएंगे?
कष्टकारी गलतफहमियां।
लेकिन अगर आपका दिमाग खराब हो और हम एक नक्शा आपके हवाले कर दें, एक टाइम टेबल आपके हवाले कर दें और कहें कि यह सड़क जा रही है, आप इस पर चले जाए।
साहब,
हम कैसे जा सकते हैं, हमारे पास तो पैसा भी नहीं है। हमारी टांग भी काम नहीं करती, हमारी यक भी काम नहीं करती, तो इस मैप से हम क्या काम कर सकते हैं? आप हमारा बेकार में समय खराब करते हैं।
ठीक है बेटे,
जब अक्ल तुम्हारे पास नहीं है, पैसा तुम्हारे पास नहीं है, जाने की योग्यता तुम्हारे पास नहीं है, तो फिर मैप की कोई जरूरत नहीं है। वह बेकार है, नक्शे से कोई फायदा नहीं है।
नक्शे का फायदा तो तब है जब आप में जाने की अक्ल हो, जाने का सामान हो।
जाने की अक्ल नहीं है, जाने का सामान नहीं है, और कहते हैं कि लीजिए साहब।
हम नक्शा ले आए। किसका नक्शा ले आए? चारों धाम का ले आए। बद्री केदार जाएंगे और देखिए, यह रही गंगोत्तरी, यह रही यमुनोत्तरी। ठीक है बेटे,
इसी कागज के आसपास चक्कर लगा ले, तेरे चारों धाम हो जाएंगे। नहीं महाराज जी, ऐसे तो नहीं हो सकता। मेरी टांग में जब ताकत होगी तब जा सकता हूँ।
बेटे
अभी तो ताकत है नहीं, इसलिए नहीं जा सकता।
मात्र कथा सुनने से कोई कल्याण नहीं। मित्रों,
आध्यात्मिकता के बारे में एक गलतफहमी कितनी ज्यादा कष्टकारक, कितनी ज्यादा अज्ञान से भरी हुई, कितनी ज्यादा मूर्खतापूर्ण और कितनी ज्यादा अनैतिक है, इमोरल है, जिसमें हमें बता दिया गया कि यह कार्य करने से और यह कथा सुनने से यह फायदा हो सकता है। कथा सुनने मात्र से अगर कोई फायदे रहे होते तो रोज कथाएं होती रहती हैं और इन्हें सुनने वालों का कोई न कोई फायदा, कोई न कोई उद्धार हो गया होता। इनसे कोई फायदा हो सकता है? कोई फायदा नहीं हो सकता। अगर आपने कान से कथा सुनी है और जीभ से कथा सुनाई दी है तब, लेकिन अगर आपने कथा सुनी और कथा सुनने के बाद में उसका प्राण, उसका जीवन और उसका रहस्य, उसका मर्म आपके जीवन में आ गया और आपने यह निश्चय कर लिया कि हम इस कथा की प्रेरणा के अनुसार, इस रामायण के अनुसार, इस भागवत के अनुसार जीवन जिएंगे और अपने क्रियाकलापों को विनिर्मित करेंगे, तो मित्रों, मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ कि राजा परीक्षित के तरीके से आपको भागवत का फायदा मिल सकता है। लेकिन अगर आप परीक्षित के तरीके से जिंदगी नहीं जिएंगे तो मैं उस सिद्धांत का खंडन करने के लिए तैयार हूँ जिसमें बताया गया था कि जो धुंधकारी था वह बांस के कोए फाड़ता फाड़ता 7 दिन की भागवत सुनकर फट से उसमें से निकल गया था।
प्रच्छन्न नास्तिकता। मित्रों,
मैं इस बात का खंडन करता हूँ और कहता हूँ कि यह बात गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। कहानी सुनने के बाद कोई व्यक्ति अध्यात्म के लाभ को प्राप्त नहीं कर सकता जब तक कि वह उसको अपने जीवन में धारण न करे, उस रास्ते पर चलने के लिए तैयार न हो। इस रास्ते पर चलने के लिए हमको उपेक्षा की बात बताई गई है और यह बताया गया है कि रास्ता चलना कोई जरूरी नहीं है, सुन लेना काफी है, कर लेना काफी है। उसी से यह सब सत्यानाश हो गया और नास्तिकता का विस्तार हो गया।
नास्तिकता का पक्ष तो मुझे बहुत बुरा नहीं लगता। इसको हम कम्युनिज्म कहते हैं।
उसके पीछे कुछ थोड़े से फैक्ट्स हैं, कुछ थोड़ी सी सच्चाई है, और मित्रों, कोई दिन आएगा जब आप देखेंगे कि हम आध्यात्मिकता की दीक्षा में कम्युनिस्टों को सबसे पहले लेंगे, क्योंकि वे विचारशील हैं। वे कहते हैं कि भगवान नहीं होता है, भगवान को हमने नहीं देखा है, इसलिए हम नहीं मानते हैं।
हाँ साहब,
ठीक बात है, आपने नहीं देखा है तो क्यों मानेंगे? लेकिन जिस दिन हम उनको भगवान को दिखा देंगे और भगवान को अक्ल से साबित कर देंगे, क्योंकि वे सच्चाई की वजह से, प्रत्यक्षवाद की वजह से इनकार करते हैं, इसलिए हम प्रत्यक्षवाद के सिद्धांतों के आधार पर, विज्ञान के आधार पर और दूसरे आधारों पर जिस दिन हम साबित कर देंगे, हमारा विश्वास है कि तब सारी दुनिया के कम्युनिस्ट हमारे शिष्य हो जाएंगे। लेकिन आप कभी नहीं हो सकते क्योंकि आपने आध्यात्मिकता के आधारभूत सिद्धांतों को काट कर फेंक दिया है और सत्यानाश करके फेंक दिया है।
इसलिए आप पक्के नास्तिक हैं और सारी जिंदगी भर पक्के नास्तिक रहेंगे।
भगवान के द्रोहियों को जैसा होना चाहिए उसी तरह का आचरण आप करते रहेंगे। कर्मों की अवमानना, स्वयं से धोखा।
मित्रों, आस्तिकता का मूलभूत सिद्धांत है कर्मफल। आदमी को श्रेष्ठ कर्म करना चाहिए और बुरे कर्मों से अपना बचाव करना चाहिए। आध्यात्मिकता का मूलभूत सिद्धांत यह है कि आदमी अनैतिक आचरण से बचे और श्रेष्ठ आचरण की ओर चले,
मनुष्य अवांछनीयताओं से दूर हो और वांछनीयता की ओर चले।
लेकिन हाय रे भगवान,
यह क्या हो गया? हमारा अध्यात्म नास्तिकवादी हो गया जिस पर हम और आप विश्वास करने लगे।
यह नास्तिकवादी अध्यात्म है जिसने मूलभूत सिद्धांतों को काटकर फेंक दिया, मटियामेट कर दिया और ठीक उल्टा प्रचार करना शुरू कर दिया। हमारे अध्यात्म ने हमको एक गंदी बात सिखा दी कि आप गंदे काम कीजिए।
गंदे काम करने की आपको पूरी तरह से छूट है।
आप गंगा जी में स्नान कीजिए।
गंगा जी स्नान करने के बाद आपके सारे के सारे पापों का कर्मफल समाप्त हो सकता है।
मैं आपसे यह पूछता हूँ कि लोगों को चकमा देने का अभ्यास तो हमको पहले से ही था। हम समाज को चकमा दे सकते थे।
हम अनैतिक होते हुए भी कोई ऐसा ढोंग बना सकते थे जिससे लोगों को यह मालूम पड़े कि यह तो संत हैं, महात्मा हैं। यह तो चारों धाम की यात्रा करते हैं, यह तो तिलक लगाते हैं और भजन करते हैं।
समाज को चकमा देने का हमें पूरा पूरा अभ्यास था कि लोग हमको धर्मात्मा भी समझते रहें और हम बुरे कर्म भी करते रहें। सस्ते शॉर्टकट मित्रों, सरकार को चकमा देने का हमको पूरा पूरा अभ्यास है।
रिश्वत दे करके, दूसरे तरीके अख्तियार करके और दो बही खाते रख करके हम सरकार को बहुत दिनों से चकमा देने के अभ्यस्त हैं। हम कानून को पहले से ही चकमा देते आ रहे हैं।
बस एक ही आधार रह गया था, परलोक का और पुनर्जन्म का, सो इस गंदे अध्यात्म ने उसे पूरा कर दिया।
चलिए मैं इस अध्यात्म पर लांछन लगाता हूँ कि यह भ्रष्ट और दुष्ट है। यह किस तरीके से भ्रष्ट है? यह इस तरीके से भ्रष्ट है कि इसने यह समर्थन किया है कि आपको अनैतिक काम करने का कोई दंड नहीं मिल सकता है और न कोई सजा मिल सकती है। आपके अनैतिक कामों को दंड से बचाने के लिए हमारे पास बड़े सस्ते, बड़े सरल, बड़े चीप तरीके मौजूद हैं जिसमें आपको एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ेगा और आपके सारे पाप भी ठीक हो जाएंगे।
कौन सा है डैम चीप तरीका?
गंगा जी में नहाए और पाप बहाए, पाप दंड बहाए।
चाहे जितना पाप कीजिए,
हर साल 100 मन पाप कीजिए, एक बार गंगा में डुबकी लगाए और सारे पापों से छुटकारा पाए। हमने सब कुछ बहुत सस्ता बना दिया।
मित्रों,
इसका क्या मतलब है? इसका मतलब प्रत्यक्ष है कि आपको पाप करने की पूरी तरीके से छूट है और आपको भगवान के दंड से डरने की जरूरत नहीं है। भगवान को आप झुठला सकते हैं,
भगवान को आप बहका सकते हैं,
भगवान को आप सुला सकते हैं।
भगवान को चकमा देने के लिए हमने आपको नए तरीके सिखा दिए हैं। सरकार को चकमा देने के लिए तो आपको इंस्पेक्टर को रिश्वत देनी पड़ती थी और समाज को चकमा देने के लिए आपको बहुत सारा ढोंग भी बनाना पड़ता था। भगवान जी को चकमा देना तो सबसे सरल है।
इसमें गंगा जी के पानी में एक डुबकी लगाए, बस हो गया उद्धार।
बेटे,
यह क्या हो गया? यह कौन सा तरीका आ गया?
मित्रों, ये ऐसे गंदे तरीके हैं जिनने अध्यात्म के मूल उद्देश्य का सफाया कर दिया। यह ऐसा गंदा तरीका है जिसने अध्यात्म को भ्रष्ट कर दिया। हमको अध्यात्म इसलिए सिखाया गया था कि आदमी श्रेष्ठ जीवन जिए, सामाजिक जीवन जिए, चरित्रनिष्ठ जीवन जिए, आदर्श जीवन जिए। इसका एक ही कारण था, सारे के सारे धर्मशास्त्र इसीलिए बनाए गए थे, पूजा पाठ इसीलिए बनाए गए थे, जप तप इसीलिए बनाए गए थे, सारी की सारी चीजें इसीलिए बनाई गई थी, लेकिन हमने सब साफ कर दिया, डैम चीप कर दिया।
किसको कर दिया?
स्वर्ग को कर दिया, भगवान की प्रसन्नता को कर दिया। भगवान की प्रसन्नता, परलोक और स्वर्ग हमारे लिए डैम चीप हैं।
अब आपको श्रेष्ठ काम करने की कोई जरूरत नहीं है। लोकमंगल के लिए त्याग बलिदान की परंपरा अपनाने की आपको कोई जरूरत नहीं है।
आप घटिया और सस्ता उपाय इस्तेमाल कीजिए। सत्यनारायण भगवान की कथा।
कौन सा सस्ता उपाय करें?
बस सत्यनारायण की कथा कहलवा लीजिए और पंडित जी को 125 रुपया दे दीजिए। इल्लोके सुख भुक्त्वा चांते सत्यपुरों में एक राजा था जो चोर था।
सत्यनारायण स्वामी की कथा कहलवाने के पश्चात इस लोक में सारे के सारे सुखों को प्राप्त करता गया और अंत में सत्यलोक स्वामी के महाराज के ब्रह्मलोक में चला गया।
बोलो सत्यनारायण स्वामी की जय। अरे दुष्टो,
यह क्या कर रहे हो?
अरे अभागो,
यह क्या कर रहे हो?
आध्यात्मिकता के सिद्धांतों का सत्यानाश कर रहे हो।
कर्मकांड कराने के पश्चात 125 रुपया दे करके, देवी देवताओं के पत्थर के खिलौनों को देखने के पश्चात आपने ये ख्वाब बना रखे हैं कि हमको वो सदगति मिलने वाली है, भगवान का प्यार मिलने वाला है, हमारा कल्याण होने वाला है। इसके लिए हमको आदर्श जीवन जीने की कोई जरूरत नहीं है।
छोटा मोटा कर्मकांड कर लीजिए,
कहीं जा करके पत्थर के खिलौने को कुछ दे करके आ जाए।
इतनी सस्ती मुक्ति, मसलन आप बद्रीनाथ चले जाओ, अमुक अमुक जगह चले जाइए, चारों धाम की यात्रा का टिकट खरीद लीजिए।
एक टिकट कितने रुपए का आया है?
साहब 351 रुपए का है। अच्छा साहब,
चारों धाम की यात्रा करने के बाद में अब क्या हो सकता है? वैकुंठ जाना पड़ेगा।
अच्छा, और स्वर्गलोक जाना पड़ेगा। अच्छा, और मुक्ति मिलेगी और स्वर्ग मिलेगा और शांति मिलेगी, 351 रुपए में सबके सब मिल जाएंगे।
आप इससे सब चीजें खरीद सकते हैं और चारों धाम की यात्रा, सैर सपाटा भी कर सकते हैं, मौज मस्ती भी कर सकते हैं, सिनेमा भी देख सकते हैं, जगह जगह की इमारतें भी देख सकते हैं और फोकट में वैकुंठ भी खरीद सकते हैं।
पर्यटन की तीर्थयात्रा,
क्या यह संभव है? संभव है।
मित्रों,
इस प्रसंग पर मुझे एक कहानी याद आ जाती है। एक थे सेठ जी, पंडित जी ने उन्हें यह समझा दिया कि तुम चारों धाम की यात्रा कर लो, भगवान तुम्हारे वश में हो जाएंगे। वे वहीं स्वर्गलोक में तो रहते हैं, भगवान भी तुम्हारी खुशामद करेंगे, ब्रह्मा जी भी करेंगे, विष्णु जी भी करेंगे और शंकर जी भी करेंगे। परलोक में जाएंगे तो सब खुशामद करेंगे और सब नौकर हो जाएंगे। अतः आप चारों धाम की यात्रा कर लीजिए।
सेठ जी रजामंद हो गए।
इतने कम दाम का इतना सस्ता सौदा भला क्या हो सकता है। इसमें न त्याग करना पड़ा, न संयम करना पड़ा, न जीवन में कुछ हेरफेर करना पड़ा।
351 रुपये में सारे देवी देवता गुलाम हो गए, वैकुंठ भी गुलाम हो गया, ब्रह्मा जी भी गुलाम हो गए और स्वर्गलोक की सीट भी रिजर्व हो गई।
अच्छा तो हम चारों धाम की यात्रा के लिए चलेंगे।
सेठानी थोड़ी समझदार थी, उसने कहा कि स्वामी
हम चलेंगे तो सैर करने के हिसाब से चलेंगे, हमें सैर करना है और तमाशा देखना है। इस ख्याल से आप क्यों जाते हैं कि इससे हमको वैकुंठ मिलने वाला है, भगवान मिलने वाला है। हम भी चलेंगे और आप भी चलेंगे।
जहाँ जहाँ सैर करने के ज्यादा अच्छे मौके हैं वहाँ चलेंगे।
धर्मशालाओं में ठहरेंगे, होटलों में ठहरेंगे,
सिनेमा देखेंगे, मौज करेंगे।
इसमें भगवान जी को क्यों शामिल करते हैं। घूमना अच्छी बात है, पर्यटन करना अच्छी बात है, पर पर्यटन करने और घूमने से भगवान का और मुक्ति का क्या ताल्लुक हो सकता है।
आप यह विचार दिमाग से निकाल दीजिए।
नहीं साहब, हम तो वैकुंठ देखने जाएंगे और चारों धाम की यात्रा करने के लिए जाएंगे।
तब सेठानी ने एक काम किया, वह बोली कि तब तो हम भी चलेंगे। अच्छा साहब,
चलिए आप भी चलिए।
सेठानी ने दिलाया आत्मबोध।
सेठ और सेठानी दोनों चारों धाम की यात्रा के लिए रवाना हो गए।
रवाना होने से पहले सेठानी ने एक रूमाल निकाला और उसमें संभालकर एक बैंगन रख लिया।
बैंगन बड़ा था, उसे रूमाल में बांध लिया और जहां जहां भी स्नान किया उन नदियों में उस बैंगन को भी नहलाया। सेठ जी ने पूछा कि यह क्या कर रही हो। अरे साहब, इससे आपको क्या मतलब है। हम इसको वैकुंठ ले जाने वाले हैं और इसे मुक्ति दिलाने वाले हैं।
हम बैंगन को नहलाएंगे, बद्रीनाथ जी का मंदिर आ गया। बैंगन को रूमाल से खोलकर सबसे पहले भगवान जी के दर्शन कराए, पीछे अपनी आत्मा को दर्शन कराए।
बेचारी बैंगन को रूमाल में बांधकर लाए और सब जगह नदी नालों में नहलाया। तीर्थयात्रा करके जब वह घर आ गई तो उसने सेठ जी से कहा कि हम आपको एक चीज खिलाएंगे। क्या खिलाओगी।
साक्षात अमृत खिलाएंगे।
देवता लोग क्या खाते हैं। अमृत खाते हैं। स्वर्गलोक में क्या रहता है। अमृत रहता है। हम आपको अमृत पान कराएंगे जो आपने कभी नहीं किया है।
अच्छा कराए। बस चारों धाम यात्रा के दौरान जो अमृत मिला है उसे आपको खाना चाहिए। हाँ साहब खिलाइए।
बैंगन जो था वह 3 महीने की यात्रा के पश्चात बिल्कुल सड़ गया था। सेठानी ने उसे पकाया और पकने के बाद में सेठ जी की कटोरी में रखा।
बस यही अमृत है, आप खाइए।
सड़ा हुआ, भूसा हुआ और बदबूदार बैंगन सेठ जी की नाक के पास जैसे ही गया तो बहुत बुरी गंध आए और मुंह में गया तो कड़वा लगा और उल्टी हो गई।
अरे अभागिन, यह क्या खिला रही है। जहर। नहीं, जहर नहीं खिला रही थी, मैं तो चारों धाम की यात्रा का फल खिला रही थी, चारों धाम की यात्रा का फल सुना रही थी।
उसने कहा कि अगर चारों धाम की यात्रा करने के बाद बैंगन का जायका इतना बदल गया और यह बैंगन पहले की अपेक्षा और अधिक सड़ गया तो आपको यह कैसे विश्वास हो गया कि जगह जगह के खिलौने देखने के पश्चात और तमाशा देखने के पश्चात और पर्यटन करने के पश्चात हमारा कोई आध्यात्मिक उद्देश्य पूरा हो सकता है।
बेटे, कोई आध्यात्मिक उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। क्रमशः
प्रस्तुत प्रवचन की प्रथम किस्त में पाठकों ने पढ़ा कि जैसे यह काया मात्र एक ढक्कन है, उसके अंदर जो चेतना है वही सब कुछ है, इसी तरह कर्मकांड मात्र का लेवर है। अध्यात्म के सारे लाभ उस मर्मस्थल से जुड़े हैं जहां व्यक्ति का प्राण, निष्ठाएं और विश्वास काम करते हैं। जैसे शून्य डी शून्य का प्राण वह पेन नहीं जिससे उसे लिखा गया, उसी तरह कर्मकांडों का भी अस्तित्व है।
बिना आत्मशोधन के कोई भी कर्मकांड आपका फायदा नहीं करा सकता।
महत्व उन शिक्षाओं का है जो इनके साथ दी जाती हैं। कथा कहानी सुनने से कोई लाभ नहीं जब तक अपना आपा, अपनी भावनाएं उनसे जुड़े नहीं।
कर्मफल की महत्ता सभी को समझनी चाहिए और यह मानना चाहिए कि यह कानून कभी नहीं बदलता। चारधाम यात्रा के परिप्रेक्ष्य में एक सेठ जी की कथा गुरुवर ने सुनाई थी जिसमें सेठानी जी ने उन्हें वास्तविक बोध कराया। अब आगे पढ़ें। खिलौनों ने अध्यात्म का सत्यानाश कर दिया। मित्रों,
हमने यह क्या कर डाला।
अज्ञान के वशीभूत होकर के हमने उस धर्म की जगह कुल्हाड़ा दे मारा और उसे काटकर फेंक दिया जिसका उद्देश्य था कि हमको पाप से डरना चाहिए और श्रेष्ठ काम करना चाहिए।
पापों के डर को तो हमने उसी दिन निकाल दिया जिस दिन हमारे लिए गंगा पैदा हो गई। गंगा नहाए और पापों का डर खत्म।
अच्छा साहब, चलिए, एक डर तो खत्म हुआ।
झगड़ा और रह गया है। क्या रह गया है?
श्रेष्ठ काम कीजिए, त्याग कीजिए, बलिदान कीजिए, समाज सेवा कीजिए, अमुक काम कीजिए।
पर इनका सफाया किसने कर दिया?
बेटे,
यह सत्यनारायण स्वामी ने कर दिया और महाकाल के मंदिर ने कर दिया। इन खिलौनों ने कर दिया।
इन खिलौनों को देखिए और वैकुंठ को जाइए। अध्यात्म का सत्यानाश हो गया, अध्यात्म दुष्ट हो गया, अध्यात्म भ्रष्ट हो गया।
भ्रष्ट और दुष्ट अध्यात्म को लेकर हम चलते हैं और फिर यह उम्मीद करते हैं कि इसके फलस्वरूप हमें वे लाभ मिलने चाहिए, वे चमत्कार मिलने चाहिए और वे सीढ़ियां मिलनी चाहिए, वे वरदान मिलने चाहिए। हर जगह है अध्यात्म की लाश।
साथियों,
यह कैसे हो सकता है? नास्तिकता का यह बहुत बुरा तरीका है और बहुत गंदा तरीका है जो आपने अख्तियार कर रखा है।
यह नास्तिकता का तरीका है।
इसमें आध्यात्मिकता के मूल सिद्धांतों को काट डाला गया है और कर्मकांडों की लाश को इतना ज्यादा सड़ा दिया गया है। जिस तरह से लाश जब एक बार सड़ जाती है तो उसका फूलना शुरू हो जाता है और फूल करके मुर्दा इतना बड़ा हो जाता है कि देखने में मालूम पड़ता है कि मरा हुआ आदमी तिगुना चौगुन हो गया। सड़ा हुआ अध्यात्म हमको 14-14 मंजिल के मंदिरों में दिखाई पड़ता है और यह मन आता है कि अभी और 14 मंजिलें बन गई होती तो हम सीधे वैकुंठ चले जाते और बीच में किराया भाड़ा भी खर्च नहीं करना पड़ता। आध्यात्मिकता की लाश अखंड कीर्तनों के माध्यम से और भंडारों के माध्यम से इतनी फैलती और सड़ती जा रही है कि हमको मालूम पड़ती है कि अध्यात्म अब सड़ गया है।
अध्यात्म मर गया, अध्यात्म का प्राण समाप्त हो गया, अध्यात्म का जीवन समाप्त हो गया।
अब केवल अध्यात्म की लाश का बोलबाला है। हर जगह अध्यात्म की लाश बढ़ती चली जाती है। हमने की गायत्री की तप साधना।
मित्रों,
ऐसे समय में आप लोगों को यहाँ आना पड़ा।
गायत्री उपासना, जिसके लिए हमारा सारे का सारा जीवन समर्पित हो गया। गायत्री उपासना, जो हमारे जीवन का प्राण है,
जिसके लिए हम जिएंगे और उसी के लिए मरेंगे,
जिसके लिए हमने अपनी भरी जवानी निछावर कर दी।
दूसरे आदमी भरी जवानी में तरह तरह की कामनाएं करते हैं। उस जमाने में हमने 6 घंटे रोज के हिसाब से 24 साल तक, 15 वर्ष की उम्र से लेकर 40 वर्ष की उम्र तक हम जमीन पर सोए। छाछ और जौ की 2 रोटियों के अलावा हमने तीसरी चीज ही नहीं देखी। नमक कैसा होता है, 24 वर्ष तक हमने कभी छुआ ही नहीं। शक्कर कैसी होती है, 24 वर्ष तक हमारी निगाह में ही नहीं आई। शाक दाल किसे कहते हैं, हमने जाना भी नहीं।
केवल गायत्री उपासना के लिए सारी दुनिया हमको पागल कहती रही, बेवकूफ और बेहुदा बनाती रही। पैसा हम कमा नहीं सके,
जमीन पर पड़े रहे।
खाने का जायका हम ले नहीं सके, इंद्रियों का जायका उठा नहीं सके, यश प्राप्त न कर सके, सम्मान प्राप्त न कर सके।
जिस गायत्री मंत्र के लिए, जिस गायत्री की महत्ता के लिए बेटे हम निछावर हैं और हमारा जीवन जिसके लिए समर्पित है, वह ऐसी महत्वपूर्ण शक्ति है जिसका आधार इतना बड़ा है कि मनुष्य के भीतर वह देवत्व का उदय कर सकती है और मनुष्य अपने इसी जीवन में स्वर्ग जैसा आनंद लेने में समर्थ हो सकता है। इस उपासना का मजाक न उड़ाएं।
मित्रों,
ऐसी महत्वपूर्ण शक्ति, चमत्कारों की देवी, ज्ञान की देवी, विज्ञान की देवी, सामर्थ्य की देवी गायत्री माता, जिसका कि हम इन शिविरों में अनुष्ठान करने के लिए आपको बुलाते हैं। हमारी बड़ी भावना थी कि इन शिविरों में हम लोगों को अनुष्ठान करने के लिए बुलाएं, पर क्या करें, आप तो हमें कई तरह से परेशान कर देते हैं, हैरान कर देते हैं, हमारा मानसिक संतुलन खराब कर देते हैं।
आप तो शांतिकुंज को धर्मशाला बना देते हैं,
आप तो इसको अन्नक्षेत्र बना देते हैं और बेटे उन लोगों को लेकर चले आते हैं जिनका कि इस अध्यात्म से कोई संबंध नहीं है, उपासना से कोई संबंध नहीं है, अनुष्ठान से कोई संबंध नहीं है। आप भीड़ लाकर खड़ी कर देते हैं और हमारा अनुशासन बिगाड़ देते हैं। भीड़ पग पग पर हमको हैरान करती है और पग पग पर अवज्ञा करती है। एक के स्थान पर 5 लोग आ जाते हैं।
कल एक व्यक्ति आया और बोला, साहब,
हम अनुष्ठान नहीं कर सकते, हम तो अपनी औरत की वजह से यहाँ आए हैं जो यह कहती है कि हमारे बाल बच्चे नहीं होते हैं, हम तो इसी कारण से आए हैं, अन्यथा किसी अनुष्ठान से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है और हम कोई अनुष्ठान नहीं करेंगे। नहीं करेंगे तो बेटे, ऐसा करके तेरी औरत के अगर बच्चा होने वाला होगा तो वहाँ धर्मशाला में ही हो जाएगा और अगर न होना होगा तो यहाँ भी नहीं हो सकता,
तू कल ले जा।
कल मैंने उसे भगा दिया, ऐसों से कैसे बनेगा स्तर।
मित्रों,
मैं चाहता था कि संस्था का स्तर अच्छा बना रहता और अनुष्ठानों का स्तर अच्छा बना रहता, पर मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने आपको निमंत्रण पत्र इसलिए भेजे थे कि आप क्वालिटी के आदमी कहीं न कहीं से ढूंढ कर लाएंगे जिनकी मुझे बहुत जरूरत है।
लोग फार्म भर करके मंजूरी मंगा लेते हैं लेकिन उससे क्वालिटी के आदमी नहीं आ पाते।
क्वालिटी के आदमी न आने से मुझे बड़ा क्लेश होता है। मैं किसे समझाऊं, क्यों समझाऊं और क्या समझाऊं?
लेकिन मैंने आपको निमंत्रण पत्र इसीलिए भिजवाए थे कि शायद आप अच्छे आदमी और बेहतरीन आदमी ले आएंगे, लेकिन आपने ये क्या कर डाला?
आप तो सैलानियों को इकट्ठा कर लाए जो कि हरिद्वार घूमने के लिए आए थे।
वे ऋषिकेश घूमना चाहते थे, बद्रीनाथ घूमना चाहते थे।
इनके लिए आपने यहाँ पड़ाव डाल दिया। कहाँ जा रहे हो?
साहब,
बद्रीनाथ जा रहे हैं। पड़ाव कहाँ पड़ेगा? शांति कुंज में। कितने दिन रहेंगे?
10 दिन रहेंगे।
पड़ाव में खूब मजा आएगा।
वहाँ सस्ता भोजन मिलता है।
ठहरने को फोकट में मिलता है। कोई किराया खर्च नहीं करना पड़ता है। वहाँ पर वरदान भी फोकट में मिलता है।
चलिए, गुरुजी से आशीर्वाद लेंगे। बेटे,
आपने यह क्या कर डाला?
आपने सत्यानाश कर दिया।
बेकार के आदमी, बुढ़े बुढ़िया, सड़े गले, लूले लंगड़े, काने कुबड़े, जो न अध्यात्म को समझते हैं, न भजन को समझते हैं, न पूजा को समझते हैं। सैलानियों के तरीके से तमाशा देखने के लिए हरिद्वार चले थे, आपने लाकर उन्हें मेरी गर्दन पर सवार करा दिया। नासमझों की भीड़ नहीं।
बेटे, आपने यह कैसी आफत बुला ली?
आपने बेकार की भीड़ इकट्ठी कर ली, जिसे देखकर मेरी आंखों में रोष आता है और उन्हें शाप देने को मन करता है। मैंने शिविरों का आयोजन इसलिए किया था कि इनमें अच्छे लोग आएंगे, समझदार लोग आएंगे, लेकिन आपने निकम्मों की, वाहियात लोगों की भीड़ इकट्ठी करके तमाशा बना दिया है। मैंने इसीलिए तमाशाबीनों पर प्रतिबंध लगाए थे, बच्चों पर प्रतिबंध लगाए थे, बुढ़े बुढ़ियों पर प्रतिबंध लगाए थे, ताकि अनावश्यक आदमी और बेकार की भीड़, बेकार के दर्शक जमा न हो जाएं और यहाँ का स्तर खराब न करें। धर्मशाला की तरह से यहाँ भी नरक न बना डालें और हमको परेशान न कर डालें, लेकिन आपने तो वही कर डाला यहाँ।
बेटे,
जो मैं नहीं चाहता था, आपने वही परेशानी खड़ी कर दी। खैर, चलिए, जो हो गया सो हो गया। बड़ी शक्तिशाली है यह साधना।
मित्रों, गायत्री मंत्र कितना सामर्थ्यवान मंत्र है। मैं चाहता था कि उस सामर्थ्य का लाभ उठाने के लिए मेरे बाद दूसरे आदमी भी रहे होते तो मजा आ जाता।
अभी जो लोग रोज गालियां दिया करते हैं और कहते हैं कि हमको 3 साल गायत्री मंत्र जप करते हो गए, पर इससे कोई फायदा नहीं हुआ। यदि मैं अपने पीछे ऐसे आदमी छोड़कर मरा होता जो मेरे ही तरीके से गर्दन ऊंची करके लोगों से यह कहने में समर्थ रहे होते कि अध्यात्म बड़े काम का है और यह बहुत उपयोगी है, फायदेमंद है और यह शक्तिशाली है और बड़ा चमत्कारी है। जैसे कि हम हिम्मत के साथ कहते हैं कि आप में से भी ऐसे आदमी होते और हम आपको यह सिखाते कि अध्यात्म क्या हो सकता है,
गायत्री क्या हो सकती है,
उपासना क्या हो सकती है और उपासना के आधार क्या हो सकते हैं।
बेटे,
मैंने इसीलिए शिविर में आपको बुलाया था कि गायत्री उपासना के जो 5 अंग, 5 कोश, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश हैं, इन 5 कोशों की उच्च स्तरीय उपासना जो इसमें जुड़ी हुई है, उसे सामान्य प्रक्रिया में भी जोड़कर रखा है। यह ऊंचे स्तर की भी है। इसे मैं आपको समझाना चाहता था कि इन 5 कोशों का अनावरण कैसे किया जाता है। अभी तक जो ज्ञान आपको दिया गया, वह यह समझकर दिया गया कि अभी आप बालक हैं।
समय आएगा तो मैं समझा दूंगा, सिखा दूंगा। सीखिए यह सच्चा अध्यात्म। मित्रों, सोचता हूँ अब शुरुआत तो करूँ, आपको पट्टी पूजन तो कराऊं, ओलम 12 खड़ी तो सिखाऊं, अक्षर ज्ञान तो सिखाऊं, गिनती गिनना तो सिखाऊं, फिर पीछे फिजिक्स सिखा दूंगा, केमिस्ट्री सिखा दूंगा, रेखागणित सिखा दूंगा, गणित सिखा दूंगा।
ये सब चीजें मैंने छिपाकर रखी थी।
अभी मैंने आपको गिनतियां याद कराई थी और पहाड़े याद कराए थे और आपको जप करना सिखाया, अनुष्ठान करना सिखाया था, माला घुमाना सिखाया था, प्राणायाम करना सिखाया था और इनकी विधि सिखाई थी, कर्मकांड सिखाया था। इन सबका प्राण तो मैंने सिखाया भी नहीं था।
मैं चाहता था कि चलते चलते इनका प्राण सिखा जाऊं, ताकि आपका अध्यात्म जीवंत हो सके, ताकि आपकी गायत्री जीवंत हो सके, ताकि आपकी उपासना जीवंत हो सके और जीवंत उपासना का जो लाभ आपको मिलना चाहिए, वह लाभ आपको मिलने में समर्थ हो सके और आप अपनी जिंदगी में यह अनुभव कर सके कि हमको कोई ऐसी चीज बताई गई थी।
अगर हमने नहीं की तो ठीक है, लेकिन की तो उसका पूरे का पूरा फायदा उठाया। हम आपको ऐसा ही अध्यात्म सिखाने के इच्छुक हैं। आपको ऐसा अध्यात्म सीखना चाहिए और ऐसा अध्यात्म जानना चाहिए। पहला चरण आत्मशोधन। मित्रों, अध्यात्म में आत्मशोधन पहली प्रक्रिया है।
पंचमुखी गायत्री के 5 मुखों को 5 दिशाओं, 5 धाराओं, गायत्री उपासना के 5 टुकड़ों में बांट दिया गया है। इसमें 3 चरण हैं, 1 पर्व है। इसमें 1 ओम है। गायत्री 5 हिस्सों में बंटी हुई है, जिसकी हम 5 हिस्सों में व्याख्या कर सकते हैं। इसको हम पांच कोशों का जागरण कह सकते हैं। इसके लिए हम आपको पांच उपासनाएं सिखा सकते हैं जिसे आपको समझना चाहिए। गायत्री माता का पहला वाला खंड वह है जिसे हम प्रत्येक क्रियाकृत्य के साथ साथ सबसे पहले सिखाते हैं और कहते हैं कि इसके बिना कोई कृत्य पूरा नहीं हो सकता। वह क्या हो सकता है?
वह है आत्मशोधन की प्रक्रिया।
आत्मशोधन प्रक्रिया के कौन कौन से अंग हैं? आप उसके बिना जप नहीं कर सकते, उसके बिना हवन नहीं कर सकते, उसके बिना कोई कर्मकांड नहीं कर सकते। यह तो हमारे कर्म का प्रारंभ है और यह हमारे अध्यात्म का प्रारंभ है जिसको हम आत्मशोधन की प्रक्रिया कहते हैं। यह द्वार है, उसमें क्या क्या चीजें आती हैं?
बेटे,
इसमें पहला अंग पवित्रीकरण का आता है।
ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्था गतो पिवा।
यह पहला पाठ है। इसके बाद आपको तीन आचमन करना सिखाते हैं। तीन आचमन करने के बाद में प्राणायाम सिखाते हैं, न्यास सिखाते हैं, शिखाबंधन सिखाते हैं और आपको पृथ्वी पूजन सिखाते हैं। ये छह क्रियाएं हैं जिन्हें शतकर्म भी कहा गया है।
आप शतकर्म का प्राण समझिए और अध्यात्म की भूमिका में प्रवेश कीजिए और गायत्री उपासना के दरवाजे को खोलिए। आप उसमें घुसने का प्रयत्न कीजिए।
यहाँ से प्रयत्न आरंभ होता है। इसके बाद और सब काम होते हैं। गायत्री जप इसके पीछे होता है, ध्यान उसके पीछे होता है और सब क्रिया कृत्य इसके पीछे होते हैं। सबसे पहले आपको क्रिया करनी पड़ेगी। अगर आपने यह नहीं किया तो आपका सब काम अधूरा है।
आत्मशोधन की प्रक्रिया से आपको उपासना आरंभ करनी चाहिए थी।
आत्मशोधन के पीछे क्या है?
बेटे,
यह वास्तव में अपनी आंतरिक सफाई की प्रक्रिया है। आंतरिक सफाई किस तरह से की जाती है? जिस तरह से आपने जमीन से कच्चा लोहा निकलते देखा है। भारी और कच्ची मिट्टी का नाम लोहा है। भारी मिट्टी लोहा कैसे हो जाती है? स्टील कैसे हो जाती है?
बेटे,
उसको गर्म करना पड़ता है, शोधन करना पड़ता है। इसकी मिट्टी अलग निकाल देते हैं, जला देते हैं। आप बोकारो चले जाए, सारी की सारी फैक्ट्रियों में आप चले जाए और यह कहिए कि साहब, यहाँ लोहे का काम होता है।
हाँ साहब,
यहाँ कच्चा लोहा पकाया जाता है।
अच्छा, तो लाए कच्चा लोहा दिखाइए।
कच्चे लोहे में मिट्टी मिली होगी। मिट्टी को साफ करना और साफ करके लोहा निकालना सबसे पहला काम है।
धुलाई और रंगाई।
इसी तरह मित्रों,
सबसे पहला काम है आत्मशोधन।
हमारी जीवात्मा जो निकृष्ट स्तर की घटिया हो गई है, गई गुजरी बनी हुई है, इसमें न कोई शक्ति है, न कोई चमत्कार है, अज्ञान में डूबी हुई है, असहाय, दीन, दुर्बल, प्रत्येक क्षण चिंताओं से घिरी हुई, पाप और अनाचारों से घिरी हुई, दैख और दर्द से घिरी हुई, शोक और संताप से घिरी हुई, अर्थात मलावरण से हमारी चेतना घिरी हुई है। इसको क्या करना पड़ेगा?
इसको बेटे,
उसी तरह से अलग करना पड़ेगा जैसे कि लोहे को मिट्टी से अलग करना पड़ता है।
अगर आप यह प्रक्रिया पूरी कर लें तो समझना चाहिए कि आपने आध्यात्मिकता का पहला वाला सिद्धांत सीख लिया। रंगाई से पहले धुलाई की जाती है। भक्ति से पहले, कर्मकांडों से पहले, अनुष्ठानों से पहले धुलाई आवश्यक है।
अगर कपड़े की धुलाई नहीं की गई है तो रंगाई नहीं कर सकते। नहीं साहब,
ऐसे ही रंग दीजिए।
क्या रंग दें?
हमारा कोट।
कैसा रंग दें?
गुलाबी रंग दीजिए।
अच्छा ला, कहाँ है कोट? तेल में डूबा हुआ, मैल में डूबा हुआ, मिट्टी में डूबा हुआ, सारा का सारा मैला पड़ा है।
बेटे, यह नहीं रंगा जा सकता।
नहीं साहब,
रंग दीजिए। बेटे,
हम गुलाबी रंग रंगेंगे तो हमारा रंग खराब हो जाएगा। यही नहीं रंगा जा सकता।
पहली शर्त अपनी सफाई।
यह कैसे रंगा जा सकता है?
इसको पहले धोबी के यहाँ ले जाओ।
धोबी क्या करेगा? इसके ऊपर जो मलिनताएं चढ़ी हुई हैं, उन मलिनताओं को वह पहले साफ करेगा, पापों को साफ करेगा, अनाचारों को साफ करेगा। जिस दिन वह सारे के सारे जो आवरण चढ़े हुए हैं उन्हें साफ कर देगा, उस दिन तू हमारे पास ले आना। फिर जो भी रंग कहेगा, हम तेरे कुर्ते को उसी रंग से रंग देंगे।
महादेव जी का गुलाबी रंग रंग देंगे, हनुमान जी का पीला रंग रंग देंगे, लक्ष्मी जी का वासंती रंग रंग देंगे।
जिस भी देवता का कहेगा हम फौरन रंग देंगे, लेकिन रंगने से पहले तुझे सफाई करनी पड़ेगी, आत्मशोधन करना पड़ेगा। अगर आपने सफाई नहीं की और रंग करना शुरू कर दिया, जप करना शुरू कर दिया, अनुष्ठान करना शुरू कर दिया, ध्यान करना शुरू कर दिया और पूजा करना शुरू कर दिया तो बेटे, आपका रंग खराब हो जाएगा।
पहले धोकर लाए।
धोने की इस प्रक्रिया का नाम ही आत्मशोधन है, जो सबसे पहले आपको सिखाई गई थी और जिसकी आज मैं व्याख्या कर रहा है। रंगाई से पहले अंगारे के ऊपर चढ़ी राख की परत को हटाते हैं। अंगारे के ऊपर राख की परत जम जाती है। राख की परत को जब हटा देते हैं तो अंगार लाल दिखाई पड़ता है, चमकदार दिखाई पड़ता है। अंगारे के ऊपर से राख की परत हटाना आवश्यक है ताकि उसकी चमक उसकी गर्मी दिखाई पड़ने लगे। जब तक अंगारे के ऊपर राख की परत जमी रहती है वह काला दिखाई पड़ता है, ठंडा दिखाई पड़ता है।
मलिनता मिटे तो चमत्कार प्रगटे। मित्रों,
इसी तरह हमारे ऊपर जो मलिनताओं के आवरण कषाय कलमश शारीरिक पापों के रूप में, मानसिक पापों के रूप में और आध्यात्मिक पापों के रूप में छा गए हैं, उनका आपको निराकरण करना चाहिए। अगर आप अपने ऊपर चढ़ी हुई मलिनता को साफ कर पाए तो आपके भीतर वह शक्ति का स्रोत, शक्ति का पुंज जिसको हम जीवात्मा कहते हैं, स्वयमेव अनायास ही शक्तिशाली होता हुआ, उभरता हुआ, उठता हुआ चला जाएगा और फिर आप अपनी आत्मा का चमत्कार, अपनी साधना का चमत्कार देख सकते हैं। देवताओं के चमत्कार नहीं, अपनी आत्मा के चमत्कार को देख सकते हैं। देवताओं के अनुग्रह नहीं, अपनी जीवात्मा का अनुग्रह देख सकते हैं। बाहर वाले देवताओं का जो नाम रखा है, वास्तव में हमने अपनी भीतर वाली सत्ता का प्रकारांतर से बाहर का नाम रखा है। बाहर से हमको कभी कोई सहायता नहीं मिलती।
बाहर का कोई वरदान हमको कभी नहीं मिलता। बाहर का कोई भगवान कभी सहायक नहीं हुआ।
भीतर वाला ही वह भगवान है जो जब जागृत होता है तो बाहर वाले भगवान को खींचता हुआ चला आता है, पकड़ता हुआ चला आता है, घसीटता हुआ चला आता है। हमारा भीतर वाला मैग्नेट सोया हुआ हो, भीतर वाला मैग्नेट गया गुजरा हो तो आप कोई चीज नहीं पकड़ सकते, न भगवान को पकड़ सकते हैं, न सिद्धियों को पकड़ सकते हैं, न आशीर्वादों को पकड़ सकते हैं, न वरदान को पकड़ सकते हैं। आप कोई चीज नहीं पकड़ सकते हैं। आप मुर्दे के तरीके से पड़े रहेंगे।
संशोधन का महत्व। इसलिए मित्रों,
अंगारे के ऊपर से राख हटाना आवश्यक है। बहुत से लोग विषयों का संशोधन करते रहते हैं। हकीम जी करते हैं, कहिए साहब क्या क्या और किस किस की दवाई बना रहे हैं। अरे साहब, यह दमे की दवाई है, हमने इसमें संख्या मिलाया हुआ है।
अरे हकीम साहब,
हमें संख्या खिलाकर मार डालेंगे क्या? नहीं, हमने संख्या को संशोधित किया हुआ है, कुचला को संशोधित किया हुआ है। किस लिए करते हैं? कुचला को इसलिए संशोधित किया हुआ है कि इससे हम वात की बीमारियों और घुटने के दर्द को ठीक कर देंगे। गंधक को हम शोधित करते हैं, इससे हम खाज खुजली को अच्छा कर सकते हैं। इस तरह हमने गंधक को संशोधित कर दिया है और वह हमारा काम करता है। कुचला हमारा काम करता है, संख्या हमारा काम करता है। हर तरह का जहर हमारे लिए उपयोगी बन जाता है, अमृत बन जाता है। इसी तरह अगर आप कच्चे पारे को ठीक कर लें, संशोधित कर लें तो पारा रसायन बन जाता है।
डिस्टिल्ड वाटर बनिए। मित्रों,
अपने आप की सफाई आत्मशोधन की पहली प्रक्रिया है। दर्पण के ऊपर जब तक गंदगी की परत चढ़ी होती है, मलिनता की परत चढ़ी होती है, तब तक हमको उसमें अपना चेहरा दिखाई नहीं पड़ता। जिस वक्त आप शीशे के ऊपर से परत हटा देते हैं, उस वक्त आपको भगवान दिखाई पड़ता है, पूजा दिखाई पड़ती है, भक्ति दिखाई पड़ती है, अपनी मलिनता दिखाई पड़ती है, दिल के आईने में है तस्वीरें यार की, जब जरा गर्दन उठाई देख ली।
मित्रों, अपनी मलिनता को साफ कीजिए और भगवान को अपने भीतर देखिए। अपने दर्पण की सफाई कीजिए। डिस्टिल्ड वाटर का उपयोग आप जानते हैं। लाए डॉक्टर साहब, एक कुनैन मिक्सचर का इंजेक्शन लगाइए। अच्छा पानी लाए। अरे
इस पानी से थोड़े ही लगेगा, इसमें तो कीटाणु जीवाणु हैं। इसका इंजेक्शन लगा देंगे तो आप मर जाएंगे, तो किस पानी से लगाएंगे?
डिस्टिल्ड वाटर से।
डिस्टिल्ड वाटर किसे कहते हैं?
बेटे,
उसे कहते हैं जो भाप के द्वारा उड़ाया हुआ है।
डिस्टिल्ड वाटर अर्थात वह आदमी जो भगवान का भक्त कहला सकता है।
और गंदा पानी कौन?
वह आदमी जो दुहाई तो भक्ति की देता है, भक्ति के कर्मकांड करता है, जिसे मैं नखरे कहता हूँ।
ऐसा आदमी भक्ति के नखरे तो करता है, लेकिन असल में उसने अपने आप को इतना घटिया बनाकर रखा है कि उसके अंदर क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। बेटे, हम उसके ऊपर कोई विश्वास नहीं कर सकते। हमारे लिए अपने भीतर की सफाई करना अत्यधिक आवश्यक है।
बुद्ध की शिक्षा सेठ जी को। भगवान बुद्ध एक शिष्य के यहाँ भिक्षा मांगने के लिए गए। भिक्षा के लिए अपना कमंडल साथ ले गए। सेठ जी को पता था कि आज भगवान बुद्ध हमारे यहाँ आने वाले हैं, सो उन्होंने मेवे की खीर बनाकर रखी कि मैं भगवान को भिक्षा में खीर दूंगा।
भिक्षा के लिए जब उन्होंने कमंडल आगे बढ़ाया तो सेठ जी ने देखा कि कमंडल के भीतर गोबर भरा पड़ा था। सेठ जी ने कहा कि भगवान, आप यह क्या कर रहे हैं? बताए कि आप गोबर भरे हुए कमंडल में खीर लेंगे।
तो बेटे,
इसमें क्या हर्ज है?
स्वामी जी,
इसमें दो हर्ज हैं। पहला यह कि इसमें गोबर भरा हुआ है, इसमें जो खीर डालेंगे वह जमीन पर गिर पड़ेगी, इस कमंडल में नहीं आएगी। दूसरा, अगर थोड़ी बहुत खीर आ भी गई तो गोबर में मिल जाएगी और अगर आपने इसे खाना शुरू भी कर दिया तो खीर और गोबर दोनों चीजों को मिलाकर खाने से उल्टी हो जाएगी और हमारा सारा प्रयत्न बेकार हो जाएगा।
तो बेटे
अब क्या करना चाहिए, गलती तो हो गई, लाए कमंडल हमें दीजिए।
सेठ जी कमंडल ले गए,
उसे धोया, साफ किया और साफ करने के बाद में उसमें खीर भरी और बुद्ध से प्रार्थना की कि भविष्य में कहीं भी भिक्षा मांगने जाया करे तो गोबर के कमंडल को धोकर के ले जाया कीजिए, ताकि कोई आदमी आपको भिक्षा दे तो उस भिक्षा का फायदा उठा सके और देने वाले का नियम भी सार्थक हो सके, देने वाले की भावना सार्थक हो सके और आपने जो पाया है उसका आप पूरा फायदा उठा सके।
कमंडल साफ रखें। बुद्ध भगवान ने कहा कि बेटा शिक्षा तो तूने अच्छी दी,
आइंदा से अब मैं ऐसा ही करूंगा।
वे कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, बेटा एक कमी रह गई।
तू जो संत महात्माओं की सेवा करता है, भगवान का भजन करता है, वह किस काम के लिए करता है? यही वरदान मांगने के लिए, आशीर्वाद पाने और कुछ सिद्धियां पाने के लिए करता हूँ।
बेटे ये सिद्धियां, ये वरदान और आशीर्वाद तेरी खीर के बराबर हो सकती हैं।
नहीं महाराज जी, खीर तो हमने 2 रुपये की बनाई है, लेकिन सिद्धि तो बहुत दाम की हो सकती है, चमत्कार तो बहुत दाम का हो सकता है, भगवान का प्यार तो बहुत दाम का हो सकता है।
हाँ बेटे,
लेकिन अगर कोई इसे देगा तो मैले कमंडल में कैसे देगा? मैला कमंडल कैसा है? जैसा तू है, भीतर से भी मैला और बाहर से भी मैला।
पहले इसे धो कर के ला, ताकि तुझे कोई वरदान तो दे, आशीर्वाद दे, तो देने वाले का श्रम सार्थक हो सके।
तुमने अभी जो पाया है उसको भी कोई ठिया ठिकाना मिल सके, ठीक से उपयोग कर सके, अन्यथा गोबर से भरा हुआ कमंडल दोनों को मिलाकर गुड़ गोबर कर देगा।
नमयकोश की धुलाई पहले।
गुड़ गोबर किसे कहते हैं? जो न खाने के काम आता है, न लीपने के काम आता है।
यह क्या लाए साहब, यह तो गुड़ गोबर लाए।
गुड़ में गोबर मिलाकर लाए?
बेटे
यह तो किसी काम का नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यह गुड़ गोबर है,
इससे आप लीपेंगे तो मक्खियां भिनकेंगी, पैर चिपक जाएगा।
यह किसी काम का नहीं रहा। इससे तो अच्छा होता कि आपने गुड़ को अलग रखा होता और गोबर को अलग रखा होता।
गोबर हमारा जीवन और अध्यात्म हमारा भगवान। बेटे
इसके साथ यदि हम भगवान की भक्ति को इकट्ठा करना चाहते हैं तो इससे कोई फायदा नहीं होगा, हमारा सारा श्रम बेकार चला जाएगा, इसलिए अच्छा है कि आप कमंडल को साफ करके चलें। यह शिक्षा हम आपको किस में देते हैं? हम आपको गायत्री के पहले वाले चरण में देते हैं। गायत्री का पहला वाला चरण, पहला वाला शिक्षण, पहली वाली धारा, पहला वाला सूक्त, पहला वाला प्रयोग जो हम आपको सिखाते हैं, वह गायत्री के 5 मुखों में से एक है। पंचकोशों की जागृति में वह पहला वाला कोश है।
पहले वाले कोश को, जिसे अन्नमय कोश कहते हैं, उसकी मलिनता का निराकरण करें।
मलिनता का निराकरण अगर आप नहीं करेंगे और खाना खाते जाएंगे, मैले को भीतर रोक कर रखेंगे तो मरेंगे,
आपको खुराक नहीं मिलेगी, मारेंगी हमारी मलिनताएं। मित्रों
फिर आध्यात्मिकता की खुराक आपके हिस्से में नहीं आने वाली, किसी देवी देवता का वरदान नहीं आने वाला,
आपको किसी सिद्ध पुरुष का अनुग्रह नहीं मिलने वाला है और कोई आध्यात्मिक चमत्कार नहीं दिखाई देने वाला है
अगर आप अपने आप को साफ करके नहीं आएंगे तब।
बेटे
हमको कई काम करने पड़ते हैं, पसीना निकालना पड़ता है, अगर हम पसीना नहीं निकालें तब, पेशाब न करें तब, सांस नहीं लें तब, इन सबके द्वारा जो हम मलिनताओं को निकालते हैं, अगर हम इन मलिनताओं को नहीं निकालें अर्थात सांस नहीं लें, पसीना नहीं निकालें, पेशाब नहीं करें, तब मलिनताएं हमारे शरीर में जमा होती चली जाएंगी और मित्रों कोई और तो मारेगा नहीं, हमारी कोई हत्या करने तो नहीं आएगा, कोई चाकू और छुरी लेकर के तो नहीं आएगा, लेकिन मलिनताएं हमको मार डालेंगी।
क्रमशः
प्रस्तुत प्रवचन की द्वितीय किस्त आपने मार्च माह में पढ़ी, उसके माध्यम से आपने जाना कि खिलौनों ने, हमारी क्षुद्रताओं ने अध्यात्म का सत्यानाश कर दिया है।
भ्रष्ट और दुष्ट अध्यात्म को लेकर हम प्रगति की राह पर नहीं चल सकते। गुरुदेव ने जीवन भर गायत्री की तप साधना की, किसी मनोकामना से नहीं, मात्र भक्तिभाव से, गुरु का आदेश मानकर।
उन्होंने कहा कि कितना शक्तिशाली है यह गायत्री मंत्र, यह समझ में आ जाए तो जीवन निहाल हो जाएगा, पर अध्यात्म की बारहखड़ी तो समझ में आई नहीं, गायत्री साधना करेंगे कैसे?
आत्मशोधन सबसे पहला चरण है। जीवत्मा जो निकृष्ट स्तर की हो गई है, उसे शक्तिशाली इसी माध्यम से बनाना है। बिना धुलाई के रंगाई नहीं हो सकती। मलिनता मिटेगी तो ही चमत्कार प्रकट होगा, विषों का संशोधन होगा तो ही वे औषधि बनेंगे, डिस्टिल्ड वाटर बनने का प्रयास करें। इस संदर्भ में बुद्ध द्वारा सेठ को दी गई शिक्षा का उल्लेख भी किया गया था।
अन्नमय कोश हमारा सबसे प्रथम है,
उसकी धुलाई सबसे पहले होनी चाहिए। मलिनताओं से मुक्ति अध्यात्म की पहली शर्त है। अब आगे पढ़ें।
हम भी ऐसे ही लंगूर हैं।
मित्रों,
मुझे मथुरा की एक घटना याद आ जाती है।
मथुरा में एक बार रामलीला हो रही थी। रामलीला में कुछ बच्चों को बंदर बना दिया, कुछ को रीछ, नल, नील और हनुमान। एक को लंगूर बना दिया।
लंगूर कैसा होता है, कैसे बनाया?
उन्होंने लंगूर ऐसे बनाया कि उस बच्चे के शरीर पर शीरा पोत दिया।
शीरा जानते हैं किससे बनता है? गुड़ में से निकलता है। बच्चों ने आपस में रुई चिपका दी और वह बन गया लंगूर।
उसके एक पूंछ लगा दी और वह लंगोटी लगाकर उछलता फिरा।
साहब, यह रामलीला का लंगूर है।
एकाध घंटे तक वह उछलता फिरा, फिर जमीन पर गिर पड़ा। अरे,
लंगूर को क्या हुआ? उसे उठाकर ले गए और पंखा झलने लगे।
लंगूर बेहोश हो गया।
अब क्या करें, उसे पानी पिलाया फिर भी होश में नहीं आया।
उसकी आंखें पलट गईं। आखिर में लंगूर को अस्पताल ले गए।
अस्पताल वालों ने कहा कि यह तुमने क्या कर डाला? क्यों साहब, इसमें क्या हर्ज हो गया? इसके शरीर से जो भाप निकलती थी, पसीना निकलता था, जो शरीर के जहर को बाहर निकालता है, तुमने शरीर पर शीरा चिपका करके उसे अंदर ही रोक दिया है। अब तो यह इस जहर की वजह से मर जाएगा।
डॉक्टर ने फौरन रुई को हटाया और शीरे को हटाया। उस शीरे को धोकर साफ किया तो देखा कि अब तक सारे शरीर में इतना जहर फैल चुका था कि उसको बचाना संभव न हो सका।
बहुत इलाज किया गया, किंतु एक घंटे के उस जहर का परिणाम बच्चे की जान लेकर सामने आया।
पहले अंदर का जहर तो निकालिए। मित्रों,
आपके भीतर कषाय कलंशों के रूप में जो जहर भरा हुआ है, उसकी सफाई की जरूरत है, उसके निराकरण की जरूरत है, उसको हटाने की जरूरत है।
यदि आप यह कर पाए तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपको अध्यात्म के लाभ अवश्य मिलेंगे।
अध्यात्म मार्ग में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए पहला वाला जो पाठ पढ़ाया जाता है, पहली वाली जो शिक्षा दी जाती है, वह यह नहीं दी जाती कि कौन सा बीज मंत्र लगाऊं, माला किस चीज की लूं,
बेटे
माला किसी भी लकड़ी की ले ले,
बेटे
यह पाठ पहला नहीं है,
यह 11वां है। महाराज जी, बीज मंत्र लक्ष्मी जी का लगाऊं या हनुमान जी का लगाऊं? बेटे,
चाहे जिसका लगा देना, पर यह पाठ 13वां है।
सबसे पहले पहला वाला पाठ पढ़।
नहीं साहब, पहला वाला पाठ पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है।
हमको तो फिजिक्स पढ़ाइए, केमिस्ट्री पढ़ाइए। बेटे,
यह भी पढ़ाएंगे, पर अभी तो तुझे वर्णमाला भी नहीं आती,
गिनती गिनना भी नहीं आता। फिर कुंडलिनी जगा दीजिए, चक्रवेधन कर दीजिए और फलाना कर दीजिए।
ये बेसिलसिले की बातें, बेसिर पैर की बातें हैं। कुंडलिनी के नीचे तो कोई बात ही नहीं करना चाहता, चक्रवेधन से पहले तो कोई बात सुनना भी नहीं चाहता, आत्म साक्षात्कार से कम तो किसी की फरमाइश ही नहीं है। भगवान को देखे बिना तो किसी को चैन ही नहीं पड़ता है, मानो भगवान किसी का नौकर है।
माला या मशीन गन? हे भगवान, चल हमको दर्शन दे। हाँ, लीजिए साहब, कीजिए दर्शन।
तू भगवान को ऐसा समझता है? नहीं महाराज जी,
आप बुला दीजिए। बेटे,
हम में तो ताकत है नहीं, तुझ में ताकत है तो बुला ले हनुमान जी को। हमारे कहने से तो कोई एकाध मित्रों ने भगवान जी को बुलाया, सो भी वे नहीं आए। तेरे कहने से वे आ सकते हों तो भले बुला ले, पीछे हम भी बुला लिया करेंगे। नहीं साहब, वे सपने में आ जाएंगे और दर्शन दे जाएंगे। किस कीमत पर तुझे दर्शन दे जाएंगे?
साहब, माला घुमाता हूँ। बेटे, तू अपनी माला को क्या समझता है? मशीन गन, खटाखट, फटाफट चलाऊंगा और सबको मार डालूंगा। किसको मार डालेगा? हनुमान जी को मार डालूंगा, संतोषी माता को मार डालूंगा और उनकी लाश को ले आऊंगा और उससे मजा उड़ाऊंगा। ऐसे कैसे हो सकता है? ले जा तू अपनी माला को।
पढ़ाई दुर्गुणों को हटाने के बाद आरंभ होगी।
मित्रों, माला मुख्य नहीं होती।
आप वहां से पढ़ना शुरू कीजिए जहां से आध्यात्मिकता का आरंभ होता है। आप अपने आप को मुलायम करने की कोशिश कीजिए। मुलायम करने से बेटे क्या हो सकता है?
आपने अपने मुंह में घास भर रखी है, उसको हटाइए ताकि आपको दूध पीने का मौका मिले। आप अपनी वासनाओं और तृष्णाओं को हटाइए, कमजोरियों को हटाइए ताकि जो खाली स्थान हो उसमें श्रेष्ठता का समावेश संभव हो सके।
नहीं साहब, हम अपने पाप को नहीं हटाना चाहते और अपने दोष दुर्गुणों को नहीं हटाना चाहते। अब हम भक्ति का वरदान पाना चाहते हैं और भगवान का आशीर्वाद पाना चाहते हैं।
अब सिद्धि का चमत्कार देखना चाहते हैं।
अगर ऐसा संभव हो सकता है तो बेटे
हमको बताना।
हमको तो पता नहीं है। हमने तो अपने आप की इतनी धुलाई की है कि जिस शक्ति से धोबी कपड़े के साथ करता है, धोबी उसे भट्टी पर चढ़ाता है, गर्म करता है, उसमें तेजाब डालता है। तेजाब डालने के बाद कहाँ ले जाता है? घाट पर ले जाता है और क्या करता है? उसे पत्थर पर पछाड़ पछाड़ कर दे मारता है और धो धो करके उसका सारा का सारा मैल निकाल देता है। हमने तो धोबी के तरीके से अपनी मलिनताओं का निवारण करने के लिए सख्ती अपने साथ की है।
आपको इससे सस्ता कोई तरीका याद हो तो तलाश करना। हमने दुनिया की तरह धुना है स्वयं को बेटे।
हमने तो अपने आप को धुनिए के तरीके से धुना है। जरा सी रुई की जब धुनाई होती है तो वह फूल फूल करके इतनी बड़ी हो जाती है। राजस्थान एक पाव की रुई के लिए मशहूर है।
इंदिरा गांधी जब वहां भरतपुर गई थी तो उनको एक पाव की रजाय भेंट की गई थी।
एक पाव रुई से सारी की सारी रजाई का लिहाफ भर दिया गया था और भर जाने के बाद में उनको यकीन दिलाया गया था कि अगर आप एक पाव की बनाई गई रजाई को ओढ़ करके जाड़े के दिनों में सोएंगी तो आपकी ठंडक दूर हो जाएगी,
आपको ठंडक की शिकायत नहीं होगी।
एक पाव की रजाई कैसे हो सकती है? हमारे लिहाफ में तो 2 किलो रुई आती है, 2.5 किलो आती है।
हाँ बेटे, बिना धुनी वाली 2.5 किलो भी कम है, 5 किलो डालनी चाहिए। लेकिन रुई अच्छी तरह से धुनी हुई है तो एक पाव का लिहाफ ही काफी हो सकता है। बेटे,
हमने अपने आप को धुना है और अपने आप को धोया है।
धुनने के बाद हमारा फैलाव होता चला गया, विस्तार होता चला गया। बेटे,
धोने के बाद हमारा कपड़ा इतना साफ होता चला गया कि जैसे टिनोपोल लगा हुआ है। हम झकाझक चमाचम कपड़ा पहनकर आते हैं। हम ऐसे मालूम पड़ते हैं जैसे कि कोई नेता हो और कोई मिनिस्टर हो। हम बहुत बढ़िया कपड़ा पहनकर आते हैं।
बेटे,
धुला हुआ लिहाफ ओढ़कर आते हैं, हमको मजा आता है।
भावनात्मक सफाई। मित्रों, धुलाई की ओर ध्यान दीजिए।
आप धुलाई की ओर ध्यान नहीं देना चाहते हैं, यह क्या गलती कर रहे हैं? आप शुरुआत नहीं करना चाहते हैं, पढ़ना नहीं चाहते हैं, यह कैसे हो सकता है?
मित्रों,
आपको यह जो पहले वाले पाठ का शिक्षण दिया गया, जिसे हम 5 क्रियाओं के हिसाब से शतकर्म कहते हैं, इसमें 5 क्रियाएं पंचमुखी गायत्री की और एक क्रिया वह जो भूमि पूजन के नाम से विख्यात है, इसको हम पृथ्वी पूजन के नाम से जानते हैं। 5 क्रियाएं कौन कौन सी हैं, इसे आप जरा समझने की कोशिश करना। पहला वाला कृत्य जो हम आपको गायत्री उपासना करने से पहले सिखाते हैं, आत्मशोधन की प्रक्रिया के भीतर कराते हैं, वह है पवित्रीकरण।
बाई हथेली में जल रखा और दूसरे हाथ से ढका ओम अपवित्र पवित्रो वा का मंत्र बोला। अगर यह मंत्र नहीं आता है तो गायत्री मंत्र बोल लीजिए,
कोई फर्क नहीं पड़ता है। मंत्र बोलकर आप इसे अपने ऊपर छिड़क लीजिए। पानी छिड़कने से क्या हो जाएगा? यह किस काम के लिए छिड़का गया था, यह हमने बताया नहीं था।
हाँ महाराज जी,
पर इस पानी से क्या होगा? एक बाल्टी पानी से तो मैं रोज ही स्नान कर लेता हूँ और आप तो जरा सा जल हथेली पर लेने के लिए कहते हैं,
इससे मैं क्या पवित्र हो जाऊंगा?
पवित्र होना होगा तो 2 बाल्टी से नहाएंगे, साबुन से नहाएंगे, बाथरूम में नहाएंगे।
हाँ बेटे,
उससे ज्यादा सफाई हो सकती है, पर इससे सफाई कैसे हो सकती है?
यह भावनात्मक सफाई है, मान्यात्मक सफाई है, मखौल मत करिए। मित्रों,
सारे का सारा अध्यात्म वास्तव में भावनाओं का खेल है और कुछ नहीं। इसमें कर्मकांडों की कीमत राय की नोक के बराबर है और इसमें जो सारी की सारी शक्ति और सामर्थ्य भरी पड़ी है, यह चिंतन के ऊपर टिकी पड़ी है, आस्थाओं के ऊपर टिकी पड़ी है, दबी पड़ी है, विचारणाओं के ऊपर जमी पड़ी है। अगर आपके पास विचारणाएं नहीं है, आस्थाएं नहीं है, मान्यताएं नहीं है, श्रद्धा आपके पास नहीं है तो समझना चाहिए कि केवल आप खेल खिलौने बना रहे हैं और मखौल कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं?
उस पवित्रता का।
एक बूंद पानी सिर पर छिड़क लिया और हो गया पवित्र।
मुझे एक घटना याद आ गई, कुंभ मेले का मार्जन स्नान।
एक बहुत बड़े नेता थे, नाम तो मैं नहीं लूंगा।
उस कुंभ मेले में सब लोग गए।
चलिए साहब,
आज कुंभ का स्नान है, सब लोग नहाए।
नेताजी पैंट पहने हुए थे, बोले हम तो नहीं नहा सकते।
इस बावत नाव में बैठे हुए थे।
पंडे को मजाक सूझा और उसने कहा कि आप ऐसा कर लीजिए कि मार्जन स्नान कर लीजिए।
मार्जन स्नान क्या होता है?
आप अपने शरीर पर छींटे लगा लीजिए। इससे क्या हो जाएगा? इससे आपको कुंभ के दिन गंगाजी में स्नान का पुण्य मिल जाएगा।
इस पर नेताजी रजामंद हो गए। पंडे ने गंगाजल लाकर दिया और उन्होंने ऐसा ही किया।
हो गया स्नान?
हाँ साहब, हो गया।
अगर आप भी ऐसा ही स्नान करते हैं, ऐसा ही पवित्रीकरण करते हैं, पवित्रीकरण का ऐसा ही मखौल बनाते हैं तो आपकी मर्जी, लेकिन अगर आप वास्तव में मखौल नहीं बनाते हैं तो आपको गहराई में प्रवेश करना पड़ेगा और यह विचार करना पड़ेगा कि हमारे ऊपर पवित्रता की वर्षा होती है। जैसे देवता फूलों की वर्षा करते थे, उसी प्रकार से इस बादल में से, इस अनंत आकाश में से ऐसी वर्षा होती चली जा रही है। ऐसा बादल बरसता चला जा रहा है जिसकी सघन बौछार हमारे ऊपर होती चली जा रही है, जो हमको सूक्ष्म और पवित्र करता चला जाता है।
पवित्रीकरण करते समय आप यह अनुभव करें, पवित्रता की, देवत्व की वर्षा। मित्रों, मैं आपको एक उदाहरण और बता सकता हूँ।
गर्मी के दिनों में सड़क पर मिट्टी पड़ी होती है, धूल पड़ी होती है।
हाँ साहब।
धूल उड़ उड़कर आँखों में जाती है।
हाँ साहब।
म्यूनिसिपल बोर्ड की जब गाड़ी आती है तो सारे के सारे धूल धक्कड़ को दबाती हुई पानी छिड़कती चली जाती।